देखिए, जो चार किस्म के इंसान हैं ना, इनमें से वालदेन, बहन भाई और औलाद के साथ तो रिश्ता खत्म नहीं हो सकता, और इसकी इजाजत भी नहीं है। ताल्लुक खराब करने की भी इजाजत नहीं है, और मियाँ बीवी के साथ भी ताल्लुक खराब करने की इजाजत नहीं है। वो आपकी बीवी या मियाँ है, आपको अच्छा ताल्लुक बनाना है उसके साथ। लेकिन बहरहाल, अगर आपका ताल्लुक नहीं बन पा रहा और कोई ऐसी, अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन आए कि आप सेपरेशन की तरफ जा रहे हैं या डाइवोर्स की तरफ जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे अगर मियाँ बीवी के दरमियान ये एक ब्रेकअप हो रहा है, खुदा ना खास्ता, तो फिर किन चीजों का आपको जायजा लेना चाहिए? यानी अगर तलाक या खुला की नौबत आ जाए तो करना क्या चाहिए और कैसे, मतलब हमें किस तरह से इस सिचुएशन को रिव्यू करना चाहिए? देखिए, आप में से कितने लोगों को प्याज छीलने का तजर्बा हुआ है? प्याज कभी मतलब काटी है आपने? काटी है, अच्छा, थोड़े से लोगों ने काटी है, अब सब माशाल्लाह जदीद हो गए कोई, अच्छा काटी है, ठीक है। प्याज जो है वो आंसू निकाल देती है, इंसानों के आंसू निकाल देती है, लेकिन इंसानों ने आज तक कभी भी ये नहीं सोचा कि अब प्यास को हाथ नहीं लगाऊंगा, इसकी वजह से मेरे आंसू निकले हैं ना, मैं अब इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। क्या इंसानों की तलब प्याज कम हुई है? क्या प्याज आंसू निकाल देती है, लेकिन कभी इंसानों के दिल में यह बात नहीं आई कि मुझे, मैं इसको छोड़ सकता हूं, मतलब प्याज को डाइवोर्स देने का कोई ख्याल नहीं आया। धूप जो है वो कितनी चुभती है ना, धूप कितनी बुरी लगती है, कितनी, मतलब अगर तेज हो तो, लेकिन उसके बावजूद धूप के जो अच्छे पहलू हैं, धूप के जो फवायद हैं वो याद रहते हैं, धूप की चुभन भूल जाती है। प्याज ने जो आंसू निकाले थे हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन प्याज ने हमारे खाने को जो जायका अता किया था उसकी वजह से उसके आंसू निकालने के अमल को हम भूल जाते हैं। मतलब इतनी जालिम सब्जी कोई और नहीं होगी ना जितनी प्याज है, कि वो आपके आंसू, अच्छे खासे सख्त दिल आदमी के आंसू निकाल देती है, लेकिन कभी भी मतलब किसी के जहन में भी नहीं आया ना कि मैं इसे छोड़ भी सकता हूं। इसी तरह धूप जो है, अब मैं धूप में कभी नहीं जाऊंगा, धूप को मैंने तीन तलाक दे दी, ऐसा नहीं सोचा होगा ना आपने। इतना सारा ये हुआ है कि वो इंसान जो सबसे ज्यादा करीब आ सकता है, आ सका है और आ सकेगा, उसी को छोड़ने का वसवसा जो है वो इंसान को, मतलब इंसान को पेश आता है। और ये बाज औकात इतनी आसानी से, मतलब बाज लोग तो इतनी आसानी से, इतनी जल्दी इस तरह के ख्याल में चले जाते हैं, उनको सोचना चाहिए, ये इसको सोचना चाहिए। तो बहरहाल, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कि आप, मतलब आप जिसकी बीवी या जिसके शौहर हैं उसकी आंखों की ठंडक बन जाएं और वो आपकी आंखों की ठंडक बन जाए, और आपके दरमियान बहुत ही पाकीज़ा, बहुत ही अच्छी मोहब्बत हो, बहुत ही गहरा ताल्लुक हो, बहुत ही अच्छा आला एतमाद की सतह हो, और बहुत खूबसूरत ताल्लुक हो आपका, और बहुत बामानी ताल्लुक हो आपका। लेकिन अगर किसी वजह से, अब हम ये मौका नहीं है कि हम उन वजूहात पे बात करें कि वो कौन सा, यानी वो क्या सिचुएशन हो जिसमें ये ख्याल आ जाना जायज हो सकता है, मतलब हम इस ख्याल के आ जाने को कि मैं इस इंसान को छोड़ दूं, इसको, ये जस्टिफाइड थॉट, मतलब मेरे नजदीक ये थॉट किस सिचुएशन में जस्टिफाइड है, ये भी एक मेरा मौजू है जो मैं अभी इस वक्त डिस्कस नहीं कर सकता वक्त की कमी की वजह से, लेकिन कभी इंशाल्लाह। लेकिन ये बहरहाल, अभी इस वक्त हम ये कह रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन पैदा हो रही है, तो अब जरा सा हम एक चेकलिस्ट बना रहे हैं। यहाँ पे भी मैं 7 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात, ये जज्बाती फैसला नहीं होना चाहिए, ये जज्बाती फैसला नहीं होना चाहिए। ये ठीक है कि ये ताल्लुक जज्बाती हुए बगैर गहरा भी नहीं हो पाता, लेकिन ये फैसला, तर्के ताल्लुक, जज्बाती फैसला नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई इंसान ये कहता है कि मैंने इस तरह की चीज सोची या सोच रहा हूं या सोच रही हूं, इस सिचुएशन पे पहुंच गया हूं, और मैं नहीं कह, मैं समझता हूं मैं जज्बाती नहीं हूं, तो वो कैसे पता लगेगा कि आप जज्बाती नहीं है? तो मैं अब आपको बताता हूं आप कैसे पता लगेगा। पहली बात, आपने इस बात को, जिस वक्त आप अच्छे मूड में थे ना, जिस वक्त आप बिल्कुल भी जज्बाती नहीं थे, उस वक्त भी जब आपने सोचा, तो आप इसी नतीजे पे पहुंचे और उसका एक शऊरी अकली तजजिया किया। वो अकली तजजिया का फॉर्मेट क्या है वो मैं बता देता हूँ। दो सिनेरियोज हैं, एक सिनेरियो ये है कि इस इंसान के साथ रहा जाए, दूसरा सिनेरियो ये है कि इसको छोड़ दिया जाए। इन दोनों सिनेरियोज के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो आपने दोनों सिनेरियोज के प्रोज एंड कॉन्स सोचे हैं और कागज पे लिखे हैं, और ये काम आपने उस सिचुएशन में किया है जब आप अच्छे मूड में थे। और जब आप ये लिख रहे थे, तो आपने ये भी लिखा कि मुझे इस इंसान से, इस इंसान ने मेरे लिए क्या किया। आपने सबसे पहले इसको लिस्ट डाउन किया, यानी सबसे पहले आपने, यानी अब आप देखिए गैर जज्बाती एनालिसिस क्या होगा, मतलब अगर कोई, अल्लाह ना करे आप में से कोई इस सिचुएशन में जाए, तो सबसे पहले ये लिखे, अच्छे मूड में जब वो अच्छे मूड में है उस वक्त वो बैठेगा, ठंडे दिल से ये सोचेगा कि इस इंसान से रफाकत और ताल्लुक के नतीजे में मुझे क्या हासिल हुआ, मैंने क्या लर्न किया, मुझे क्या खुशी मिली, मुझे क्या आराम मिला, मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे क्या, अगर ये नहीं आता तो मैं कहाँ होता, जो भी फायदे उससे हासिल हुए हैं उसको लिस्ट डाउन करे। और फिर उसके बाद दो सिनेरियोज इमेजिन करे कि इसके साथ विद हिम विदाउट हिम, या विद हर विदाउट हर। तो विद हर के अंदर प्रोज एंड कॉन्स क्या है, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब ये कि इसके साथ रहने में फायदा और नुकसान क्या है, और इसके बगैर रहने में भी फायदा और नुकसान क्या है, और उसको लिस्ट डाउन करे। और जब उसको लिस्ट डाउन करे कागज पर, तो कम से कम 3 दिन तक, यानी मुख्तलिफ सिचुएशंस में, 3 डिफरेंट कह लीजिए मौकों पर, उस पेपर को निकाल के देखे और सोचे कि इसमें कुछ और इजाफा तो नहीं किया जा सकता। तो अगर ये काम आपने इतना थॉरली किया है, कागज पे किया है, तो मैं कहूंगा कि आपने महज जज्बात की बुनियाद पर कोई कंक्लूजन नहीं किया है, बल्कि आपने इसका एक थॉटफुल और एक लॉजिकल एनालिसिस किया है आपने। तो ये पहला काम है। दूसरी बात ये कि कम से कम 3 बार अपने ताल्लुक को, यानी हमारे ताल्लुक क्यों बिगड़ा है, उसके उसकी रीजंस क्या हैं, उसके फैक्टर्स क्या हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जाए, फिर उनको ठीक करने की कोशिश की जाए। तो कम से कम 3 बार अपने ताल्लुक को इस्तवार करने की भरपूर कोशिश की जाए। तो उसकी सही अंदाज से कोशिश की गई है, और आप ये कह सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि, यानी जो मैं अगले पार्ट में बताऊंगा ना अपने ताल्लुक को बेहतर बनाने के 7 प्रैक्टिकल स्टेप्स, तो आपने उन सबको फॉलो किया, और आप कहते हैं कि मैंने कम से कम 3 दफा अपनी लाइफ में एक सीरियस अटेम्प्ट की इन चीजों को ठीक करने की, और अपने ने जो रीजंस थे या फैक्टर्स थे मेरे ताल्लुक के खराब होने के, उनको मैंने सही से आइडेंटिफाई किया, उनको हैंडल करने की कोशिश की, उसको ठीक करने की। और अगर आप कम से कम, ये मिनिमम है, मतलब ये जितना बेहतर, जितना ज्यादा करें तो बेहतर है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट ये है, इस फैसले पर पहुंच जाने के बाद भी अगर आपके दिल में ये बात आ गई और आपने इसको कंक्लूड भी कर लिया, तो कम से कम 40 डेज तक आप वेट करें, 40 डेज तक आप वेट करें, और इस फैसले का जिक्र उस दौरान में नहीं करें किसी से। 40 डेज तक वेट करें, होल्ड करें आप। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऐसे लोगों से मशवरा ना करें। अब ये चौथा पॉइंट मेरा ये है कि ऐसे लोगों से मशवरा ना करें जो, जिनका खुद अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप खराब है। बहुत से लोग रिलेशन, मतलब मैं, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे रिलेशनशिप कोचेज मौजूद हैं जिनका अपना, अपने शरीक हयात से रिलेशनशिप ठीक नहीं है। वेस्ट के अंदर तो भरे हुए हैं ना, मतलब वेस्टर्न, मॉडर्न वेस्टर्न, यानी जो इस वक्त जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मतलब वो खुद नफसियाती तौर पर, उनमें से बहुत से लोग फिट नहीं है, और बहुत से लोगों का अपने शरीक हयात के साथ, वालदेन के साथ ताल्लुक खराब है। मतलब मैं ये बात लम्हा फिक्रिया के तौर पर कह रहा हूँ, मतलब मैं, मेरे मेरे कहने का मकसद ये है कि इस बात को समझें कि अगर एक ऐसा इंसान जिसके अपने माँ बाप से ताल्लुक टूटा हुआ है, बहन भाइयों से ताल्लुक टूटा हुआ है, या अपने, अपनी बीवी या अपने शोहर से ताल्लुक खराब है, आप उसी से एडवाइस ले रहे हैं कि मैं अपने शोहर को कैसे मनाऊं, तो जिससे पूछ रहे हैं उसका खुद बिगड़ा हुआ है, या उसने खुद ही सेपरेशन, वो तो खुद ही खत्म हो गया उनका ताल्लुक, तो आप उसको अपना मुशीर या अपना कोच नहीं बनाए इसमें, आप इसको समझें इस पूरी बात को। पांचवी बात ये कि मशवरा लें, लेकिन किससे लें, ये पांचवी बात है। मशवरा कीजिए, लेकिन मशवरा उस इंसान से कीजिए जिसके लिए, जिसके दिल में चीजों की मोहब्बत नहीं है, जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है, जिसके अंदर खुद पसंदी नहीं है, जो अपनी तारीफ सुनना नहीं चाहता, और जिसका खुदा पर ईमान बहुत पक्का है, जिसे हम गॉड कॉन्शियस कहते हैं ना, यानी लिल्लाहियत, या एक बहुत, एक बेखौफ किस्म का इंसान है, इंसानों से नहीं डरता और अल्लाह से डरने वाला है, और बिल्कुल मतलब आप का लिहाज नहीं करेगा, और आपसे वो खुल के बात कह सकता है, आपका खौफ नहीं करता, आपका लिहाज नहीं करता, जो बात होती है सीधी सीधी करता है, और अल्लाह से डरता है, ऐसे बंदे से मशवरा कीजिए। उस बंदे से नहीं कीजिएगा जिसको मैंने अभी पहले कहा था, यानी जिससे नहीं करना है, ठीक है। अब छठा पॉइंट ये है कि खैर की दुआ करें, दुआ करें इस खुले जहन के साथ, इस खुले दिल के साथ, कि जो मेरे और उसके हक में बेहतर है वो मुमकिन फरमा दीजिए, ये दुआ कीजिए। ये दुआ, यानी बाज़ोकात हम अपने जहन के या अपने अपने रुझान कल्ब के मुताबिक दुआ करते हैं, मतलब हमारी जो इंक्लिनेशन ऑफ हार्ट है ना, हम पहले से इंक्लाइंड होते हैं, या पहले से कुछ हमारी, मतलब हम चाह रहे होते हैं कि बस चीजें ऐसे हो जाएं, लेकिन इस ओपननेस के साथ दुआ करना कि या अल्लाह, दिल तो मेरा ये चाह रहा है कि ये हो, लेकिन मैं आपसे वो मांग रहा हूं जो मेरे हक में बेहतर है, आप जो मेरे और उसके हक में बेहतर है वो मुमकिन फरमाइए। मैं मतलब मुझे मेरे हाल पे मत छोड़िए, बल्कि जो मेरे हक में बेहतर है मुझे मेरी ख्वाहिशात के हवाले मत कीजिए। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि ये हो जाए, लेकिन अगर मेरी ख्वाहिश को फॉलो करने में वाकई खैर है तो मुमकिन कीजिएगा, नहीं तो मुमकिन नहीं कीजिएगा। तो अल्लाह बाज़ोकात इंसानों को उनके हाल पे छोड़ देता है ना, मतलब जो तुम चाह रहे थे वो कर दिया, बस ठीक है, तुम जो चाह रहे हो वो तुम्हें वो मिल गया। लेकिन अल्लाह करे कि हमें वही अल्लाह हमें हमारे लिए मुमकिन बनाए जो वाकई हमारे लिए जिसमें खैर है। तो एक इस ओपननेस के साथ ना कि या अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर है, जो मेरे लिए वाकई ठीक है, तो इस जहन और इस खुले जहन खुले दिल के साथ दुआ कीजिए। और इसी दुआ को मैं इस्तखारा कहता हूँ। इस्तखारा मतलब ये एक्चुअली इसी दुआ को हम इस्तखारा, इस्तखारा इसी दुआ का नाम है। और फिर उसका कंटेंट आप इस्तखारे का जब देखेंगे ना, खैर का सवाल उसके उसको अपने मफहूम के साथ, और फिर सिर्फ इस्तखारे की जो अरबिक दुआ है वो भी आप कीजिए, लेकिन अपनी अपने लफ्जों में भी ना, जैसे हम किसी को बाज़ औक़ात एक हम फॉर्मल लेटर देते हैं उसके साथ एक कवरिंग ईमेल भी लिखते हैं, तो वो कवरिंग ईमेल जो है ना वो आपके अपने वर्ड्स में जो आप अल्लाह से बात कर रहे हैं ना, और फिर आप इस्तखारा भी कर रहे हैं। इस्तखारा कीजिए, लेकिन अपने लफ्ज़ों में भी जो बात आपको कहनी है ना वो कहिए, ये इसकी मुस्तकिल दुआ कीजिए। फिर सातवीं बात यह है कि बच्चों को उनके वालिद या वालदा से बदज़न ना कीजिए, उनसे उनका ताल्लुक खराब ना होने दें। मतलब अगर आपका और आपके शरीक हयात के दरमियान कोई प्रॉब्लम है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों से अपने स्पाउस की गीबत करते हैं, और बहुत करते हैं। मतलब उनके बच्चों को पता होता है कि मेरी अम्मा या मेरे अब्बा कितने मजलूम है ना, ये तो मतलब कौन सा दुख है जो इन्होंने मुझे नहीं फील करवाया। तो वो बहुत से पेरेंट्स नादानी में अपना हर गम अपनी औलाद को भी फील करवाने में तस्कीन उनको मिलती है, तो ये अननोइंगली होता है, इससे बचना चाहिए। यानी मैं तो बहुत से लोगों से कहता हूँ कि भाई उस इंसान की इतनी गीबत ना कीजिएगा कि लेने के देने पड़ जाए। मतलब जितना उसने जुल्म किया है ना, बस उसके मसावी गीबत कीजिएगा। मतलब उसने उसने आपको जितना नुकसान पहुंचाया था, बस उसके बराबर, मतलब वो जैसे होता है ना बराबर तोलो। यानी आप वो क्या होता है कि उसने उसने जितना आपका आपको सताया था, आपने जवाब में उसकी इतनी गीबत कर ली है कि अब आप ऑलरेडी मतलब मकरूज हुए हुए हैं उसके। फिर बाद में पता लगेगा कि दुनिया में भी सताए गए और आखिरत में भी कुछ नहीं बचा, इसलिए कि इतनी गीबत कर ली कि वहां पे भी देना पड़ा। देखिए, मैं अक्सर बहुत से लोग डाइवोर्स हो रही होती है मेरे पास आते हैं, डिस्कशन होता है, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ देखो, तुम्हारे बच्चों को इस बात से तकलीफ होती है और उन्हें दुख होगा कि तुम दोनों दूर क्यों हो गए, ये एक तकलीफ है ना। लेकिन ये तो एक चीज है ना कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं, लेकिन आपकी औलाद से उनका माँ या बाप ना छीने। मतलब आप कहें कि भाई ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में हम दोनों मौजूद रहेंगे, अलग अलग मौजूद रहेंगे, इकट्ठे मौजूद नहीं रहेंगे, बस ये है मुश्किल, लेकिन हम दोनों तुम्हारी जिंदगी में मौजूद रहेंगे। ये समझ ही नहीं आता बहुत से लोगों को, वो कहते हैं कि नहीं, हम दोनों, एक नुकसान तो वो है कि हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी से अलग हो गए, और अब मैं अपनी औलाद की जिंदगी में से भी किसी एक को नॉकआउट करके रहूंगा, कोई एक निकल जाए बाहर, या मैं रहूंगा या वो रहेगा। अरे भाई, औलाद का निकाह थोड़ी हुआ था अपने अम्मा या अब्बा से कि उनको भी तलाक देनी, मतलब औलाद से भी चाह रहे हैं कि वो भी अपनी माँ को डाइवोर्स कर दे या बाप को डाइवोर्स कर दे, वो क्यों चाह रहे हैं आप? यानी औलाद तो खुला नहीं लेगी ना माँ बाप से, उनकी माँ है या उनका बाप है, जैसा भी है, उनका अपने माँ से या अपने बाप से ताल्लुक को जिंदा रखना, इसकी फिक्र आपको होनी चाहिए कि मैं जिस इंसान से अलग हुआ हूँ, मेरी औलाद उस इंसान से अपना ताल्लुक जिंदा रखे। मैं एक दफा एक किसी से बात हो रही थी, उनको डाइवोर्स हो गई, तो वो अपने शोहर की जो मतलब कारिस्तानियां सुना रही थी, वो बहुत सारी होती है ना बातें, तो वो थोड़ी सी मैंने सुनी, फिर उसके बाद, और वो औलाद से इस बात पे नाराज होती हैं, और ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं मतलब मेरी जिंदगी में, मैं यानी जो मेरे पास लोग आते हैं उसमें बहुत लोग हैं जो इस बात पे परेशान होते हैं कि उनका बच्चा जो है या उनकी बेटी या उनका बेटा उनके एक्स स्पाउस के साथ कनेक्शन में क्यों है। तो मैं उनसे फिर मैंने एक फर्जी सिचुएशन दी, मैंने उनसे कहा कि अगर आपके एक्स स्पाउस का एक्सीडेंट हो जाए और ये इत्तला आए कि वो बहुत बुरी कंडीशन में है, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, अल्लाह ना करे, तो आपकी औलाद को और उनको ब्लड की जरूरत है, तो आपकी औलाद को जाना चाहिए कि उनको अपना ब्लड दे या नहीं जाना चाहिए? ये सवाल मैंने बहुत से लोगों से किया, कुछ लोग खामोश हो गए, कुछ लोगों ने कहा मुझे नहीं पता, और कुछ लोगों ने कहा नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि औलाद को तो जाना ही चाहिए, आपको भी उनके हक में दुआएं खैर करनी चाहिए, और अगर आपके लिए भी मुमकिन है तो आप भी चले जाएं, मतलब ठीक है, आप दुआ कर लें, आप बच्चों को फैसिलिटेट कर दें, चलो मैं ड्रॉप कर दूंगी या कर दूंगा, ठीक है, अब वो जैसे भी थे, लेकिन अल्लाह उनके लिए बेहतरी का मामला करे। देखिए, एक चीज होती है कि अगर इसको खत्म किया जा रहा है ना, इस रिश्ते को, तो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, खूबसूरती के साथ, एक एक कंसेंसस के साथ इसको खत्म किया जाए, और इसका डैमेज जो है ना वो अपनी जिंदगी, यानी अगर आपने इसको अच्छे खुश उसलूबी से खूबसूरती के साथ खत्म करेंगे ना, तो इसके डैमेज अपनी जिंदगी अपनी जात में भी नहीं होगा, कम होगा, और औलाद को भी उस डैमेज से महफूज रखेंगे। लेकिन कुछ लोग इस तरह करते हैं कि वो औलाद पे भी उसकी बहुत ज्यादा उसका वो होता है। तो इसी पॉइंट के डिटेल में ये है कि भाई आप उन पे एलिगेशंस ना लगाएं, आप उनकी गीबत ना करें, आप उनसे नफरत ना करें। आपको उनसे मोहब्बत खत्म हो गई वो एक मसला है, लेकिन आप उनसे मोहब्बत खत्म होने का लाजमी मतलब ये नहीं होता है कि उस इंसान से नफरत की जाए। आप कहें बस ठीक है, मुझे उससे मोहब्बत नहीं फील होती, लेकिन मैं उससे नफरत भी नहीं करूंगा। यानी नफरत करना मेरे लिए एक अखलाकी, मतलब मेरी एक अखलाकी जिम्मेदारी है कि उस इंसान के लिए अपने दिल में नफरत ना पैदा होने दूं। तो ठीक है, वो उससे मोहब्बत महसूस नहीं होती, फिर उससे हसद ना करें। तो ये तीन चार बातें जो मैंने कही है ना, उस पे इल्जाम ना लगाएं, उसकी बुराइयों का जिक्र ना करें, उसकी पर्दादारी रखें। देखें, ये शौहर और बीवी को लिबास कहा गया है ना, तो उतारे हुए लिबास की भी ना एक पर्दादारी होती है, वो रखें, ख्याल करें। उतरा हुआ लिबास है लेकिन कभी लिबास रहा है, तो बस मतलब इसके लिए जो जिस किस्म का रवैया एक साहिब अखलाक को होना चाहिए, यानी एक इंसान के अंदर जिस जो मोरल मोरल जिसकी एक मोरल एक सतह है, अखलाकी सतह है, तो वो इन चीजों के अंदर बड़ी शाइस्तगी और बड़ी खूबसूरती से और बड़े अच्छे भले अंदाज से काम करेगा। तो बहरहाल ये इसका ख्याल करें, और ये देखें कि दिल में हसद तो नहीं पैदा हो रहा उस इंसान के लिए। तो और बहुत अच्छा हो कि उसके लिए दुआएं खैर करते रहें, बस जब भी मतलब उसके लिए भी दुआ कर दिया करें, अल्लाह उसके साथ हिदायत खैर का मामला करे, मैंने माफ कर दिया, अल्लाह उसे माफ करे। यानी ये बड़ी जरा मुश्किल बात है, लेकिन ये कि इसको समझने की बात है। ये जो मैं सारी बात की, मेरे जहन में दो बातें थी, ये बात मैंने क्यों की, ये तलाक और इसकी बात क्यों की। ये सवाल बहुत से लोगों की तरफ से आता रहा है मेरी मेरे पास, लोग इस पे मुझसे डिस्कस करते रहे हैं, बहुत से मौाकों पे लोगों ने कुछ पूछा भी है, और मैंने सोचा था कि मैं इस पे बात करूंगा। मैंने ये सोचा कि अल्लाह करे कि सबके मामला सही हों, और आप में से बहुत से लोगों का बहुत अच्छा बहुत हेल्दी रिलेशनशिप हो इंशाल्लाह। लेकिन इस पूरी बात को जो मैंने बयान की है, ये एक एक लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, कि अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो भी हमारे हमारी अखलाकी जिम्मेदारी क्या है कि इस चीज को कैसे किया जाए, तो हम इससे कुछ सीखें। तो इस पूरी बात को करने का मकसद भी यही है कि इस यानी अगर ये फैसला यानी किसी जज्बाती होकर और एक गलत फैसला ना हो जाए, मतलब बहरहाल इसकी आपको ये ऑप्शन अल्लाह ने दिया है, इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हम फिर बड़े मुतमईन हों और हम कह सकें कि हाँ वाकईतन मैंने इस ऑप्शन को सही वजह से सही तरीके से इस्तेमाल किया है। ये कोई अल्लाह आसान करे, अल्लाह आप सबके ताल्लुक के साथ आपके ताल्लुक की हिफाजत फरमाए। बहरहाल